Om Shanti. कल प्रातःकालीन सत्र में आपने राजयोग का परिचय प्राप्त किया और आपने समझा राजयोग अर्थात आत्मा का परमात्मा से मानसिक स्नेहपूर्ण संबंध। तो हमने समझा साधक कौन है, आत्मा की पहचान या स्वयं की सत्य पहचान, वो हमने समझा कि मैं केवल शरीर नहीं लेकिन इस शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ और आत्मा सत्वगुणी है। सात गुण हैं आत्मा के, निजी गुण ज्ञान प्रेम सुख शांति आनंद पवित्रता और शक्ति। और शरीर में आत्मा का स्थान कहाँ है, मस्तक के मध्य में, जिसे हम भ्रकुटी कहते हैं। और आत्मा इस सृष्टि में परम धाम से आई है, जो परमात्मा का भी धाम है। और ये सृष्टि एक विशाल रंगमंच है जिसमें हम सभी आत्माएं इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर अपना अपना एक्ट या कर्म कर रहे हैं। तो ये आपने समझा। अब क्योंकि परमात्मा से संबंध स्थापित करना है तो हमें उसकी भी सत्य पहचान होनी चाहिए। साध्य कौन है जिससे हमें योग लगाना है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम परमात्मा को याद नहीं करते हैं, हम सभी करते हैं। हमारी अपनी अपनी विधि है, परंपरा है, या जो भी हमारे पूर्वज करते आए वो हम भक्ति पूजा पाठ भजन कीर्तन आराधना करते हैं। लेकिन फिर भी हमारी शिकायत होती है कि हमारा मन भगवान में नहीं लगता। तो क्यों नहीं लगता है, मन भगवान में क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अज्ञान है, परमात्मा की सत्य पहचान नहीं है। जैसे दुनिया में भी जिसको हम नहीं जानते हम उसे याद नहीं कर सकते। हम कितने लोगों को याद करते हैं, इस संसार में तो अरबों लोग रहते हैं, हमारी याद के दायरे में कितने लोग होते हैं जिनसे हम परिचित हैं, और उससे भी अधिक जिनसे हमारा संबंध है, और उससे भी अधिक जिनसे हमारा स्नेह है। तो परमात्मा की याद हमें तभी आएगी जब उनसे हमारा परिचय होगा, संबंध होगा और स्नेह होगा। तो आज अगर हम ईश्वर की बात करते हैं तो अनेक मान्यताएं अनेक विचार प्रचलित हैं, इतने विश्वास हैं ईश्वर के बारे में। कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें, जितने दिमाग उतने विचार, ये स्थिति है। कोई कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, कोई कहते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है, कोई कहते हैं भगवान सब जगह है, कण कण में भगवान है, फिर कोई कहते हैं भगवान तो सबके हृदय में निवास करते हैं, फिर नेचर इज गॉड। खासकर जो फिजिसिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, वो ऐसा मानते हैं कि प्रकृति ही सब कुछ है। कुछ मानते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है, और कुछ कहते हैं भगवान जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो मैं नहीं समझती कि भारत में कोई नास्तिक होते हैं। आप में से कोई है जो मानते भगवान है ही नहीं? हाथ खड़ा कर सकते हैं जो ये मानते हैं कि भगवान है ही नहीं? तो कोई भी नहीं। तो इसका मतलब हम सब परमात्मा में विश्वास तो करते हैं। तो एक हिंदू धर्म में ही इतनी मान्यताएं हैं, और धर्म वाले अपने धर्म पिता को भगवान मानते हैं। कोई कहते हैं भगवान निराकार निर्गुण निरंजन है, ये भी कहा, जैसे कहा नाम रूप से न्यारा है तो फिर वो निराकार निर्गुण निरंजन है, ऐसा भी कहते हैं। तो आखिर सत्य क्या है? क्योंकि ये सब तो भगवान नहीं हो सकते। हमारा विवेक स्वीकार करता है कि परमात्मा एक है, तो फिर वो एक परमात्मा कौन है? इसमें से सत्य क्या है? हमारी स्थिति कैसी है? एक कहानी आती है, ऐसे है बच्चों की कहानी, कि एक बार 5 अंधे किसी नगर से जा रहे थे, तो जहां से वो गुजर रहे थे वहां से एक हाथी भी गुजर रहा था, और हाथी के कारण वहां सड़क पर बहुत भीड़ थी, बच्चों का शोर था। तो उन्होंने पूछा कि क्यों इतना शोर हो रहा है, तो कहा यहाँ हाथी है। अब उन्होंने तो हाथी कभी देखा नहीं था, तो उन्होंने पूछा हाथी क्या होता है, तो बोला एक बड़ा सा जानवर होता है। तो उनको थोड़ी जिज्ञासा हुई कि हाथी क्या होता है, तो फिर वो देख तो नहीं सकते थे, तो उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि इस हाथी को हम छुएंगे, छूकर अंदाज लगाएंगे कि ये हाथी कैसा है। तो वो पांचों ने हाथी को छुआ, एक ने उसकी पीठ को छुआ, एक ने उसके टांग को, एक ने पूंछ को, एक ने उसके सूंड को, एक ने उसके कान को छुआ, फिर वो मिले। तो जिसने पीठ को छुआ था उसने कहा ये हाथी तो मुझे दीवार जैसा लग रहा था, जिसने टांग को छुआ उसने कहा ये हाथी तो मुझे खंभे जैसा लग रहा था, जिसने सूंड को छुआ उसने कहा ये हाथी तो मुझे पाइप जैसा लग रहा था, जिसने पूंछ को छुआ उसने कहा ये तो रस्सी जैसा था, और जिसने कान को छुआ उसने क्या कहा ये तो सुपड़े जैसा था, जैसे अनाज साफ करने वाला सुपड़ा होता है, हाथी के कान ऐसे होते हैं। तो अब हाथी तो इनमें से एक जैसा भी नहीं है, क्यों गलती कर रहे हैं वो? क्योंकि वो हाथी को देख नहीं पा रहे, पूरे हाथी को एक साथ देख नहीं पा रहे, हाथी के एक अंग को छूकर वो अंदाज लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हाथी कैसा है। और वो जो कह रहे हैं उन पांचों को भी मिला दिया जाए तो भी हाथी हाथी नहीं बनता है। तो हमारी भी ईश्वर के प्रति लगभग यही स्थिति है, क्योंकि हम भगवान को देखते नहीं हैं, अनुभव करते हैं। और हमारे अनुभव कैसे होते हैं? मेरे जीवन में कोई दुख आया, क्योंकि हम कब याद करते भगवान को? सुख में थोड़ी याद करते हैं, कब याद करते हैं? दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख आए को। तो मेरे जीवन में कष्ट आया, मेरे जीवन में समस्या आई, और हमने भगवान को याद किया। फिर कोई कोई हमें राय भी देते हैं, आप ये देवी जी के दर्शन करेंगे, सिद्ध देवी हैं, मनोकामना पूरी करने वाली हैं, या इन गुरु जी के पास आप जाएंगे तो वो आपको कोई भी उपाय बताएंगे, या जो भी हनुमान जी हैं संकट मोचक हैं, या गणेश जी हैं विघ्न विनाशक हैं, किसी के भी उपासना करने के लिए, मंत्र जपने के लिए हमें कोई जो भी कहता है हम वो करते हैं। अब वो हमने किया और मेरी भावना पूरी हो गई, जो भी हम चाहते थे या जो भी हमारा दुख तकलीफ था वो दूर हो गई, तो मेरी भावना किस में बैठ गई? जिसके माध्यम से मुझे वो प्राप्ति हुई, चाहे वो देवी जी के माध्यम से हुई, चाहे वो गुरु जी के माध्यम से हुई, चाहे वो गणेश जी के द्वारा हुई, जिसके द्वारा भी हुई, लेकिन वो परमात्मा का समग्र रूप नहीं है। वो उसकी एक शक्ति को हमने, जैसे उन्होंने एक अंग को छुआ, तो वो पूरा हाथी तो नहीं है ना, तो हमने क्या अनुभव कर लिया, परमात्मा की थोड़ी शक्ति को हमने किसी माध्यम से अनुभव कर लिया और उसी को हमने भगवान मानना शुरू कर लिया। तो वो परमात्मा का सत्य नहीं है, इसलिए हम कहते हैं जाकी रही भावना जैसी तिन देखी प्रभु मूरत, मेरी भावना के अनुसार हम उसको अनुभव कर रहे हैं। और जब हम सत्य की बात करते हैं तो सत्य को भी आज संसार में कई रूपों में लोग मानते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में सत्य की परिभाषा ही अलग अलग है। यानी हम ईश्वर का सत्य क्या है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो विज्ञान क्या कहता है, विज्ञान कहता है कि जो प्रयोगशाला में प्रमाणित हो जाए, प्रमाण चाहिए, प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, है ना, तो जो प्रमाणित हो जाए वही सत्य है। अगर आप उसका प्रमाण नहीं दे सकते तो विज्ञान उसको नहीं मानेगा। लेकिन संसार में सभी चीजों को हम प्रमाणित नहीं कर सकते। ऐसे ही एक जोक की तरह है कि एक बार एक प्रोफेसर जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, वो नास्तिक थे, तो भगवान की कोई बात आई, तो क्योंकि वो भगवान को नहीं मानते थे तो वो बच्चों को ये बताना चाह रहे थे कि भगवान जैसी कोई चीज है नहीं। तो उन्होंने क्लासरूम की दो चार चीजें बच्चों से पूछी, कहा बच्चों ये मेज दिखाई देती है, तो उन्होंने कहा हाँ सर, तो बोला ये है, दिखाई देती है। अच्छा ये आपको ब्लैक बोर्ड दिखाई देता है, हाँ सर दिखाई देता है, तो ये है। फिर डेस्कटॉप रखा हुआ था, ये दिखाई देता है, हाँ दिखाई देता है ये। फिर पूछा भगवान दिखाई देता है, तो बच्चों ने कहा नहीं दिखाई देता, तो भगवान नहीं है। एक स्टूडेंट क्लेवर था, वो खड़ा हो गया, उसने कहा सर मुझे भी एक सवाल पूछना है। कहा पूछो। तो उसने स्टूडेंट्स को कहा क्या हमारे सर का दिमाग दिखाई देता है, तो दिमाग नहीं है। तो दुनिया में सब चीजें दिखाई दें कोई जरूरी नहीं है, कुछ चीजों को हम सिर्फ अनुभव से जानते हैं। तो आत्मा और परमात्मा के विषय देखने के विषय नहीं है, अनुभव करने के ही विषय हैं। ऐसे ही राजनीति सत्य किसको मानती है, किसको मानती है, बहुमत ही सत्य है। जिसको बहुमत मिल जाए, चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो, लेकिन वो सत्ता में आ जाएगा। कानून किसको सत्य मानता है, गवाह को सत्य मानता है। अगर वो गवाह गलत गवाही दे दे, झूठी गवाही दे दे, और झूठी गवाही दे करके वो निर्दोष को दोषी साबित कर दे या दोषी को निर्दोष साबित कर दे, तो जज कुछ भी कर नहीं सकता। उसको तो जैसी गवाही है उसी अनुसार निर्णय देना है। और समाज किसको सत्य मानता है, समाज कहता है जिसके पास शक्ति है वो जो कहेगा वो सत्य है, चाहे पद की शक्ति है, धन की शक्ति है, बल की शक्ति है। उसको हम मुहावरे में कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये समाज का सत्य है। और अध्यात्म किसे सत्य मानता है, किसे मानता है, जगत मिथ्यम ब्रह्म सत्यम। ये जगत मिथ्या है अध्यात्म कहता है, और ब्रह्म सत्य है। तो जगत को मिथ्या क्यों कहा गया, इसलिए कहा झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, क्योंकि ये परिवर्तनशील है। हर क्षण यहां इस संसार में परिवर्तन हो रहे हैं, है ना। झूठी काया क्यों कहा, क्योंकि हमारा शरीर ही हर 3 महीने में पूरी तरह से बदल जाता है। जो भी अंदर की कोशिकाएं हैं सब पूरी चेंज हो जाती हैं, इसीलिए वो लेटेस्ट फोटोग्राफ मांगते हैं। आपका बचपन का जो चेहरा था वो थोड़ी युवावस्था में होता है और वृद्धावस्था में होता है, अंतर आता जाता है ना। तो परिवर्तनशील है ये संसार, इसीलिए इसे मिथ्या कहा गया। लेकिन परमात्मा या ब्रह्म को सत्य क्यों कहा गया? क्योंकि वो सदा एक जैसा है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, वो तीन गुणों से नहीं गुजरता। सत्तो रजो तमो, ये तीन गुण है, ये प्रकृति के गुण है। तो परमात्मा त्रिगुणातीत है, तो उसमें कभी भी ये परिवर्तन नहीं आता। सत्य पर एक राजा जनक की कहानी आती है कि एक बार राजा जनक ने एक सपना देखा और उन्होंने देखा कि पड़ोसी राजा ने उन पर आक्रमण किया है, उन्हें बंदी बना लिया गया है और उनको दरबार में पेश किया गया। तो राजा ने पूछा, राजा जनक मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप जैसा चाहेंगे वैसा मैं आपके साथ निर्णय लूंगा। अगर आप चाहते हैं आपका राज्य आपको वापस दे दिया जाए तो आपका राज्य लौटा देंगे, आप जैसा कहेंगे। तो राजा जनक ने कहा, नहीं मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे सन्यासी बनना है, आप मुझे जंगल में छोड़ दीजिए। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया राजा जनक को जंगल में छोड़ दिया जाए। तो वहां जब जंगल में लेकर के गए तो उनको ऐसा महसूस हुआ मुझे भूख लगी है। तो उन्होंने सैनिकों को कहा कि कुछ समय के भोजन का प्रबंध कर दो, एक समय विशेष। तो सैनिकों ने उनके लिए भोजन लगाया और जैसे ही थाली उनके सामने लाई गई, वो तो जंगल था, आसमान में चील उड़ रही थी, तो उसने एक झपट्टा मारा और रोटी लेकर चली गई। इतने में उनकी नींद खुल गई और उन्होंने देखा कि कोई जंगल नहीं, कोई चील नहीं और किसी ने मेरे पर आक्रमण नहीं किया, मैं तो यहाँ अपने बिस्तर पर सोया हूँ। लेकिन उनका विचार चलने लगा कि क्यों मैंने ऐसा सपना देखा, क्या इसका रहस्य है। तो फिर उन्होंने सोचा कि सुबह गुरु आएंगे दरबार में, तब उनसे इसकी चर्चा करेंगे। तो जब वो दरबार में गुरु के सामने थे तो उन्होंने ये सवाल पूछा कि मैंने ऐसा सपना देखा, सत्य क्या है, मेरा ये वर्तमान सत्य है या मेरा वो सपना सत्य है। तो गुरु ने कहा कि राजन, न तो आपका ये वर्तमान सत्य है ना ही आपका स्वप्न सत्य है, लेकिन जिसने इन दोनों स्थितियों का अनुभव किया है वो सत्य है। तो किसने अनुभव किया, किसने अनुभव किया, जोर से बोलिए, आत्मा ने अनुभव किया। तो आत्मा हर स्थिति में है, कल भी आत्मा थी, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगी, है ना। ये शरीर विनाशी है, शरीर बदल जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी, समय बदल जाएगा, लेकिन आत्मा तो सदा ही है। इसीलिए आत्मा को हम अजर अमर अविनाशी कहते हैं। तो जो अविनाशी है वो सत्य है। तो परमात्मा के सत्य की कसौटी क्या है? जैसे सुनार के पास कसौटी होती है, खरा सोना है, 24 कैरेट का सोना है या मिलावट वाला सोना है या कितने कैरेट का है, 18 कैरेट का, जितना भी, या हीरा असली है नकली, कसौटी है उसके पास। तो ऐसे ही परमात्मा के सत्य की 5 बातें हैं। जो इस पर खरा उतरता है वो भगवान हो सकता है। तो परमात्मा हम किसको कहेंगे, जो सर्व धर्म मान्य है, जिसे सभी धर्म स्वीकार करते हैं, यानी वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का भगवान एक है। ऐसे नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग, मुस्लिम का भगवान अलग और ईसाई का भगवान अलग है। जैसे मैंने कहा, हमारा विवेक स्वीकार करता है कि ईश्वर एक है, तो वो एक कौन है जिसे सभी धर्म स्वीकार करते हैं। फिर वो सर्वोच्च शक्ति है, उससे ऊंचा कोई नहीं, उसका कोई माता पिता नहीं, उसका कोई शिक्षक नहीं, उसका कोई गुरु नहीं। ये 3 संबंध मनुष्य के जीवन में हमेशा ऊंचे होते हैं। माता पिता के सामने बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए तो भी वो बच्चा ही रहेगा, ऐसे ही शिक्षक जो पढ़ाने वाला है, आज वो प्राइमरी स्कूल का शिक्षक होगा और वो बच्चा ऑफिसर बन गया, लेकिन फिर भी जब वो मिलेगा अपने टीचर से तो क्या कहेगा, ये मेरे शिक्षक हैं, इन्होंने ही मुझे पढ़ाया। फिर ऐसे ही गुरु, जो गुरु ज्ञान देते हैं। तो ये तीन संबंध मनुष्य के जीवन में सदा ही ऊंचे हैं, लेकिन परमात्मा पिताओं का भी पिता है, शिक्षकों का भी शिक्षक है और गुरुओं का भी गुरु है, और वो सर्व से न्यारा है। सर्व से न्यारा मतलब वो जन्म मरण में नहीं आता, वो कर्म फल में नहीं आता, वो पाप पुण्य और सुख दुख से भी परे है, क्योंकि जो जन्म नहीं लेगा उसको शरीर ही नहीं है, तो फिर कर्म भी नहीं है तो सुख दुख भी नहीं है। तो इसीलिए परमात्मा इससे मुक्त है, इसीलिए वो मुक्ति दाता है। जो स्वयं मुक्त है वही सबको मुक्ति दे सकता है। जैसे एक जेल में बंद व्यक्ति खुद को छुड़ा सकता है? नहीं, उसको छुड़ाने वाला कोई बाहर वाला ही होगा। तो ऐसे ही परमात्मा लिबरेटर कहलाता है, क्योंकि वो स्वयं मुक्त है, इसीलिए वो हमें भी मुक्त कर सकते हैं। फिर वो सर्वज्ञ है, वो तीनों कालों का ज्ञाता है, सर्व विषयों का ज्ञाता है। आत्मा अल्पज्ञ है, हमें एक विषय का भी पूरा ज्ञान नहीं होता और एक काल को भी हम पूरी तरह से नहीं जानते हैं, लेकिन परमात्मा सर्वज्ञ है और वो सर्व का दाता है। तो हमने इतनी सारी मान्यताएं देखी, अब इन मान्यताओं में कौन इस पर खरा उतरता है, इस मापदंड पर लागू होता है। तो यहां आप देख रहे हैं कि जो भी विभिन्न धर्म पिता हुए, जिन्होंने धर्मों की स्थापना की, उन्होंने भगवान के बारे में मार्गदर्शन दिया है। हर एक धर्म में ईश्वर के बारे में कहा गया है। तो जैसे संसार के चार मुख्य धर्म माने गए, और भी हैं लेकिन मुख्य धर्म चार माने गए हैं, तो उनमें से एक है क्रिश्चियन धर्म। क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की क्राइस्ट ने, और क्राइस्ट ने क्या कहा ईश्वर के बारे में, गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड, लीड मी दाई काइंडली लाइट। और उनके अंतिम शब्द थे जब उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, तो क्या कहा उन्होंने, हे पिता तू इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने परमात्मा को पिता कहकर के संबोधित किया, इसीलिए कहा आई एम सन ऑफ गॉड, अपने को हमेशा उस ईश्वर का पुत्र बताया। और कभी भी आप चर्च में जाएंगे, गए होंगे चर्च में, तो वहां पर वो कैसे प्रेयर करते हैं, कैंडल जलाते हैं, कैंडल जला करके फिर प्रेयर करते हैं, एक कैंडल वहां हमेशा जलती रहती है। तो वो उस परमात्मा की लाइट का प्रतीक है। तो उन्होंने भगवान का जो स्वरूप माना वो लाइट माना और खुद को उसका पुत्र बताया और उन्हें गॉड फादर कहा, भगवान को गॉड फादर कहा। अगर हम मुस्लिम धर्म में देखते हैं, जो दूसरा मुख्य धर्म है, तो मुस्लिम धर्म में मोहम्मद साहब उनके धर्म स्थापक हुए और उन्होंने क्या कहा, नूरे इलाही, ये अरबी भाषा के शब्द हैं, क्योंकि वो अरब में हुए तो उन्होंने वो भाषा में कहा। नूरे इलाही का अर्थ है अल्लाह नूर है, नूर माना प्रकाश, हिंदी में हम उसे प्रकाश कहेंगे, इंग्लिश में हम लाइट कहेंगे, लेकिन अर्थ वही है। और इसीलिए मुस्लिम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती, आप कभी भी मस्जिद में जाएंगे तो कोई मूर्ति नहीं होती वहां पर, वो कुरान या नमाज पढ़ते हैं जो उनकी शिक्षाएं हैं और उन्हें वो अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। और मुस्लिम एक बार हज करने भी जाते हैं, जो भी हज करने मक्का मदीना में, जो कि मोहम्मद साहब के स्थान रहे, यानी उनका जन्म स्थान और उनका मृत्यु स्थान, ये दोनों स्थान मुस्लिम धर्म में बहुत महत्व रखते हैं, तो वो वहाँ हज करने के लिए जाते हैं। उनका वो तीर्थ है, हम ऐसे कहेंगे, जैसे हिंदू मानते हैं कि हम तीर्थ करेंगे तो हमारे पाप कट जाएंगे, ऐसे वो भी मानते हैं कि हमें अपने पूरे जन्म में एक बार हज जरूर करना है जिससे हमारे पाप कट जाएं, हम पाक हो जाएं, वो पवित्र को पाक कहते हैं। तो वहां पर जो काबा का पत्थर है मक्का मदीना में, जो काबा का पत्थर है आप देख रहे हैं चित्र में, वो गोल सा पत्थर है, कोई उसका मूर्त रूप नहीं है, उसकी वो परिक्रमा करते हैं, पहले वो चूमते थे, लेकिन अब बहुत अधिक संख्या होती है तो वो सिर्फ परिक्रमा करते हैं और उसे वो संगे अश्वत्थ कहते हैं, माना अल्लाह का वो प्रतीक मानते हैं उसको। और उनके हज का तरीका है, हे परवर दिगार नूरे इलाही मेरा हज कबूल करो, और फिर शैतान को पत्थर मारते, ऐसा ये उनकी विधि है। तो फिर क्या माना गया मुस्लिम धर्म में भी अल्लाह को, क्या माना? नूर या लाइट। मोहम्मद साहब ने कहा, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। मैं मनुष्य हूं, मुझे खुदा मत कहो, लेकिन उस खुदा का नूर मुझे मिला है और वही मैं आप तक दे रहा हूं, ये उन्होंने कहा। ऐसे ही एक तीसरा मुख्य धर्म है सिख धर्म। तो सिख धर्म में गुरु नानक देव जी मुख्य हुए, बाकी और भी गुरु थे लेकिन मुख्य गुरु नानक देव जी थे, जिन्होंने कहा एक ओंकार सतनाम अकाल पुरुष कर्ता पुरुष निर्भय निर्भय रजोनी साहब, वो उनकी अपनी भाषा है जिसमें उन्होंने ये ईश्वर के बारे में कहा कि वो एक ओंकार, एक है, निराकार है, वो निर्भय निर्भय है, काल से परे है, वो सदा सत्य है, आदि सत, जुगादि सत, है भी सच, होसी भी सच, ऐसा उन्होंने कहा कि वो सदा सत्य है और ऐसे ईश्वर का मैं दास हूं। उन्होंने भी कभी खुद को भगवान नहीं कहा और वो गुरुद्वारे में कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करते। आप कभी गए होंगे गुरुद्वारे में तो आप देखेंगे कि वहां गुरु ग्रंथ साहब रखते हैं, वो गुरु ग्रंथ उनके गुरुओं की शिक्षाओं का संकलन है जिसका वो पाठ करते हैं और उसे ही वो अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को निराकार कहा, माना हमारे जैसा कोई मूर्त रूप नहीं है उसका, इसीलिए सिख धर्म में भी मूर्ति पूजा नहीं होती है। जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध हुए और उन्हें भी दिव्य ज्योति का साक्षात्कार हुआ और उसके पश्चात ही उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया। इसीलिए वहां जापानी लोग ध्यान करते हैं, जापान में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की कई देशों में बौद्ध धर्म की मान्यता है, पर उनकी ध्यान की विधि है कि वो 3 फुट की ऊंचाई पर, 3 फुट की दूरी पर एक गोल पत्थर रख करके और उस पर ध्यान करते हैं और उसको कहते हैं चिनकोन सेकी। चिनकोन सेकी का मतलब होता है शांति का दाता, शांति देने वाला। तो उन्होंने भी दिव्य ज्योति के रूप में परमात्मा को देखा, हालांकि बहुत विस्तार से वो ईश्वर के विषय में ज्यादा नहीं कह पाए। और फिर जो चौथा धर्म है मुख्य धर्म, हिंदू धर्म। अब हिंदू धर्म में तो हमारे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, कितने भगवान हैं? हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, 33 करोड़। तो जरूर आपने सुना है तभी बोल रहे हैं। तो जिन्होंने सुना है 33 करोड़ देवी देवताएं, वो हाथ उठाएं। देखिए 50% ने सुना है। तो 33 करोड़ देवी देवताओं की तो हम पूजा नहीं कर सकते, कर सकते हैं तो हम 33 करोड़ का गायन करते हैं, पूजन हम मुख्य मुख्य का करते हैं। तो उसमें समझो श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी, गणेश जी, देवियों की पूजा करते हैं हम, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं। अब लेकिन हम क्या देखते हैं कि इन सभी देवताओं में भी ये एक दूसरे से ऊंचे हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि सर्वोच्च कौन है और सर्वधर्म मान्य कौन है। तो सर्वोच्च और सर्वधर्म मान्य नहीं है, हम देख रहे हैं श्री राम ने शिव की पूजा की, जब उनको रावण से युद्ध करना था, समुद्र पार करना था, शक्ति चाहिए थी, तो उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और उसे क्या कहा, रामेश्वरम। रामेश्वरम एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है राम के ईश्वर। तो राम के ईश्वर कौन हो गए, शिव। ऐसे ही श्री कृष्ण ने वृंदावन में महाभारत के पहले शिव जी की पूजा की, क्योंकि महाभारत का युद्ध बहुत बड़ा युद्ध था तो उनको भी शक्ति चाहिए थी, तो फिर उनके भी ईश्वर कौन हो गए, शिव हो गए। जितनी भी देवियां हैं उनको हम शिव शक्ति कहते हैं। शिव शक्ति का अर्थ है संसार से आसुरों या आसुरी शक्तियों का संहार करने के लिए शिव ने देवियों को उत्पन्न किया और इसीलिए उन्हें असुर संहारिणी कहते हैं। उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं और वो देवी किसी असुर को मार रही है, जैसे दुर्गा को कहते हैं उन्होंने महिषासुर को मारा। हम सब जानते हैं कि देवियों को यही दिखाते हैं कि उन्होंने किसी ना किसी असुर का संहार किया। तो फिर उनके रचयिता कौन हो गए, देवियों के रचयिता कौन हो गए, शिव। तो निश्चित है कि शिव उनके पिता हैं, तो उनसे बड़े हैं। और यदि हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो हनुमान जी ने किसकी भक्ति की, श्री राम की, और श्री राम जी ने किसकी भक्ति की, शिव जी की, तो ऊंचे हो गए शिव। अगर हम गणेश जी को मानते हैं तो गणेश जी किसके पुत्र हैं, शिव जी के। और मानो हम कोई गुरु को मानते हैं, मानो हम विवेकानंद को मानते हैं, विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस काली देवी के भक्त थे और काली देवी कौन है, शिव शक्ति है। तो अगर हम देखेंगे तो सब देवताओं में जो सर्वोच्च है या गुरुओं के भी जो आराध्य हैं, उनके भी जो आराध्य हैं, वो कौन है, शिव हैं। और इसीलिए हम उनको कहते हैं महादेव, यानी जो देवों के भी देव हैं। तो हिंदू धर्म में सर्वोच्च कौन हो गए, शिव हो गए। और शिव ही एक ऐसी प्रतिमा है हिंदू धर्म में जिनकी हम निराकार रूप में पूजा करते हैं, शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं। शिवलिंग का कोई मूर्त रूप नहीं है, एक कोई शारीरिक रूप नहीं है। जितने भी देवी देवता हैं उनको हम साकार रूप में पूजते हैं, सिर्फ एक शिव है जिनको हम निराकार रूप में पूजते हैं और उनको हम कहते हैं ज्योतिर्लिंग। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग तीर्थ हैं। ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ, अमरनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ, महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर, रामेश्वर, वैद्यनाथ, ये सब जो हैं, ये आप देख रहे हैं चित्र में, ये सब हैं 12 ज्योतिर्लिंग। तो ये ज्योतिर्लिंग जब हम उसे कहते हैं, ये संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्योति का प्रतीक, ज्योति का प्रतीक। तो शिवलिंग क्या है, ज्योति का प्रतीक है। अब हम ज्योति जलाते हैं, मानो फिर हम गोल पत्थर के रूप में शिव जी की पूजा करते हैं। अगर हम उसे आसन देते हैं तो थोड़ा ऊंचा, जमीन से थोड़ा ऊंचा आसन दे करके शिवलिंग बनाया जाता है, और नहीं तो सीधा जमीन पर ही उसे स्थापित कर दिया जाता है। ऐसे हमने बहुत मंदिरों में अलग अलग रूप से शिवलिंग को देखा है। और तीन लाइनें होती हैं शिवलिंग के ऊपर, या शिव जी के भी जो भक्त होते हैं वो अपने माथे पर तीन लाइन का तिलक बनाते हैं। ऐसे तीन लाइन उनके मस्तक पर होती है, फिर बीच में या तो एक बिंदी होती है या नेत्र होता है, इस तरह से बनाया जाता है। तो उसका क्या भावार्थ है कि वो त्रिकालदर्शी हैं, त्रिलोकी नाथ हैं और त्रिमूर्ति हैं, और इसीलिए शिवजी पर तीन पत्ते वाला बेलपत्र भी चढ़ाते हैं। केवल शिवजी पर ही चढ़ाते हैं और किसी देवी देवता पर वो नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये तीन तीन विशेषताएं शिव की हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, ये अमरनाथ हम जानते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हिंदू धर्म में परमात्मा का निराकार स्वरूप या ज्योति स्वरूप सर्वोच्च स्वरूप है, वही स्वरूप सभी धर्मों में भी मान्य है। सभी धर्मों ने भी परमात्मा के उस लाइट स्वरूप को स्वीकार किया। तो फिर परमात्मा का सत्य स्वरूप क्या हुआ? क्या हुआ? लाइट स्वरूप है। तो वो सर्वोच्च हो गए और सर्वधर्म मान्य भी हो गए। अब अगर हम ये कहते हैं कि वो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिवान हैं, तो ये जो तीन तीन बातें हैं वो उनको सर्वज्ञ बनाती हैं। त्रिकालदर्शी हैं, वो तीनों कालों के ज्ञाता हैं, वो तीनों लोकों के मालिक हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, और त्रिमूर्ति हैं, तीन देवताओं की वो रचना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। इसीलिए हम उन्हें गॉड कहते हैं, GOD, कैपिटल गॉड, कैपिटल लेटर में जो हम गॉड लिखते हैं। जी माना जनरेटर, ओ माना ऑपरेटर और डी माना डिस्ट्रॉयर। तो वो जनरेट करते हैं ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं, ऑपरेट करते हैं विष्णु के द्वारा, विष्णु के द्वारा पालना करते हैं, और डी माना डिस्ट्रक्शन, तो वो विनाश करते हैं शंकर जी के द्वारा। लेकिन यहां पर भ्रम होता है कई बार, शिव और शंकर एक हैं, एक मान लेते हैं और कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। तो शिव और शंकर दो रूप ही अलग अलग हैं। चलो किसी के दो नाम क्या चार नाम भी हो सकते हैं, लेकिन वो होगा तो एक ही ना। मेरा रोज का जो नाम मुझे घर में बुलाते हैं वो अलग है, मेरा ऑफिस का नाम अलग है, मेरे दोस्त मुझे अलग नाम से बुलाते हैं, लेकिन हूं तो मैं वही व्यक्ति। लेकिन यहाँ तो दो नाम है तो दो रूप भी हैं, अलग रूप हैं। शंकर जी साकार शरीरधारी हैं और शिव तो निराकार हैं। शंकर जी को तपस्वी रूप में दिखाया है और किसी भी देवता को तपस्वी रूप में नहीं दिखाया, सिर्फ शंकर जी ही तपस्या कर रहे हैं। तो किसकी तपस्या कर रहे हैं? वो जरूर उनसे ऊंचा कोई और है जिसकी तपस्या वो कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कई बार मंदिरों में उनके आगे शिवलिंग होता है, तो इसका मतलब वो शिव जी की तपस्या कर रहे हैं और अपनी तपस्या से वो शिव के समीप है, और इसीलिए उन्हें हम साथ में नाम लेते हैं। शिव शंकर भोलेनाथ अगर हम कह रहे हैं तो दोनों साथ में हैं। जैसे हम श्री राधे श्री कृष्ण कहते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहते हैं, सिया राम कहते हैं, इसका मतलब क्या है? दोनों एक हैं, दोनों एक हैं, या दोनों साथी हैं? तो ऐसे ही कहेंगे ना, दोनों साथी हैं इसीलिए उनका नाम हम साथ में ले रहे हैं। तो ऐसे ही शिव शंकर साथी हैं पर एक नहीं है। शंकर जी विनाशकारी देवता हैं, उनके कर्तव्य भी अलग अलग हैं। शंकर जी के लिए क्या मानते हैं? जब वो अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो संसार का विनाश हो जाता है, प्रलय आ जाती है दुनिया के अंदर, और शिव तो कल्याणकारी हैं। तो इसीलिए शिव जो हैं वो निराकार हैं, ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, और उन्हें हम शिव कहते हैं। अलग धर्म वाले उन्हें अलग नाम देते हैं, मुस्लिम उन्हें खुदा अल्लाह कहते हैं, क्रिश्चियन उन्हें गॉड फादर कहते हैं, सिख उन्हें वाहेगुरु कहते हैं, सतनाम कहते हैं, और हम उन्हें प्रभु परमात्मा ईश्वर कहते हैं। लेकिन वो है एक ही, वो लाइट स्वरूप है परमात्मा। और हमने उन्हें शिव कहा क्योंकि शिव संस्कृत शब्द है, हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत रही है, इसलिए हमारी आध्यात्मिकता सारी संस्कृत से उत्प्रोत है। तो शिव जो नाम हमने दिया वो यथा नाम तथा गुण वाला नाम है, जैसा उनका नाम है वैसा ही गुण है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, तो वो सदा कल्याणकारी है। शिव का एक अर्थ होता है पवित्र, वो पवित्र है। एक अर्थ होता है शांति, तो वो शांति दाता है। एक अर्थ होता है बिंदु, तो वो बिंदु स्वरूप है, माना दम लाइट है, पॉइंट है, इसीलिए हम उन्हें शिव कहते हैं। दुनिया में यथा नाम तथा गुण नहीं होता, नाम कुछ होगा और गुण कुछ और होंगे, है ना। नाम है शांति और जीवन में जरा भी शांति नहीं। नाम है लक्ष्मी लेकिन होंगे बहुत गरीब, हो सकता है। नाम है संतोष लेकिन संतोष जैसा कोई, और किसी भाई का नाम होगा रामचंद्र, राम जैसा एक भी गुण उसके अंदर हो सकता है ना। तो दुनिया में यथा नाम तथा गुण, इसके ऊपर भी एक जोक जैसा आता है कि एक बार एक गांव के व्यक्ति की शादी हुई, उसका नाम था छज्जूमल। तो छज्जूमल नाम पत्नी को पसंद नहीं आया, तो उसने कहा लोग शादी के बाद अपना नाम बदल लेते हैं, आप भी अपना नाम बदल लो। वो बहुत भोला था, तो उसने सोचा ठीक है पत्नी को नाम पसंद नहीं है, तो मैं दो चार लोगों को गांव में नाम पूछता हूँ, जिसका नाम मुझे अच्छा लगेगा वो रख लूंगा। तो वो गया तो गली में एक औरत ओखली कूट रही थी, तो उसने उसको पूछा तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी ठीक नहीं है, ये ओखली कूट रही है। फिर वो गया आगे और एक व्यक्ति भीख मांग रहा था, उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा मेरा नाम धनपत है। धनपत है, भीख मांग रहा है, नहीं ठीक नहीं है। फिर वो आगे गया तो एक अर्थी जा रही थी, तो उसने पूछा कि ये अर्थी जा रही है इनका नाम क्या था। तो एक ने बताया उनका नाम अमरनाथ था। उसने कहा अमरनाथ, और ये मर गए, ठीक नहीं है। वो घर वापस आया और उसने अपनी पत्नी को कहा लक्ष्मी कूटे ओखली, धनपत मांगे भीख, अमरनाथ जी मर गए, मेरा छज्जू नाम ही ठीक। तो दुनिया में जैसे नाम है वैसे गुण नहीं होते हैं, लेकिन परमात्मा को हम शिव इसलिए कहते हैं क्योंकि वही गुणों वाला वो नाम है, इसीलिए हमने उनको शिव कहा। लेकिन यही स्वरूप सभी धर्मों में भी मान्य है, और वो परम आत्मा है, यानी वो भी एक आत्मा है जो परम है, परम प्लस आत्मा ऐसे कहेंगे ना। तो वो भी एक आत्मा है जो परम है। तो परम किसमें है? वो परम कोई आकार में नहीं है, कोई रोशनी में नहीं है। कोई लोग समझते हैं भगवान हजारों सूर्यों से तेजोमय है, उसके तेज को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं, परमात्मा का रूप ऐसा नहीं है। जैसे आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, ऐसे ही परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे पिता और बच्चे, जिसकी भी संतति होती है वो उसी के समान होती है। आज मनुष्य के बच्चे मनुष्य के ही समान होते हैं। आज अगर शेर का बच्चा होगा तो वो शेर की तरह ही होगा, गाय का बच्चा जो होगा वो कैसा होगा? गाय की तरह ही होगा। तो परमात्मा की संतान आत्मा है, और आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। लेकिन हमने उन्हें निराकार कहा, इसका मतलब ये नहीं उसका कोई आकार ही नहीं है और वो नाम रूप से न्यारा है। नहीं, उनका आकार है ज्योति बिंदु, वो इतना सूक्ष्म है, इस आकार शरीर की तुलना में कि हम उन्हें निराकार कह सकते हैं। माना ये तुलनात्मक है, जैसे कोई भी हॉल को हम छोटा कब कहेंगे, जब उसकी तुलना में कोई बड़ा हॉल है, जैसे ये हार्मनी हॉल है, ये बड़ा हॉल है, इसी के नीचे एक हॉल है मेडिटेशन हॉल, उसकी कैपेसिटी सिर्फ 500 लोगों के बैठने की है, तो वो हॉल इस हॉल से छोटा है। उससे भी छोटा हॉल सामने है ट्रेनिंग सेंटर में, जहां पर सिर्फ 200 लोग बैठ सकते हैं, वो हॉल उससे भी छोटा है। तो हमने तुलनात्मक रूप से छोटा बड़ा कहा। अब इससे भी बड़ा हॉल हो सकता है, तो ये हॉल छोटा हो जाएगा। तो भगवान को हमने निराकार इस साकार शरीर की तुलना में कहा कि साकार शरीर की तुलना में वो इतना सूक्ष्म है कि हम नेत्रों से भी उसको नहीं देख सकते, और इसीलिए वो जैसे कि निराकार है। लेकिन परमात्मा का नाम शिव है और रूप ज्योति बिंदु है, वो नाम रूप से न्यारा नहीं है, और गुणों में वो परम है। वो परम आत्मा कैसे है ना, कोई वो लाइट में बड़ा है, आकार में बड़ा है, नहीं, लेकिन गुणों में वो महान है, गुणों में वो असीम है, गुणों में अकुट है। जैसे उसकी तुलना हम सागर से करते हैं, तो क्यों सागर से हम तुलना करते हैं, क्योंकि सागर भी अथाह होता है और उसकी सीमाओं तक पहुंचना मुश्किल होता है ना? तो इसी तरह से परमात्मा को हम शांति का सागर, प्यार का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, सर्वशक्तिवान, ऐसे हम उनके गुणों का बयान करते हैं। और उसके लिए कहा गया कि सारे जंगल को कलम बनाओ, सारी पृथ्वी को कागज बनाओ, और सारे सागर को स्याही बनाओ, और स्वयं सरस्वती बैठ करके भी उसकी महिमा लिखे, तो भी उसकी महिमा अपरम अपार है। तो ये परमात्मा की महिमा है जी। ये शास्त्रों में ऐसा कहा गया है ना, एक उपमा देते हैं ना जैसे, तो वो उपमा के रूप में कि वो सदा गुणों का भंडार है ना, गुणों की खान है। जैसे हम कहेंगे आत्मा को हम सागर से भेंट नहीं करते, आत्मा को हम स्वरूप कहते हैं, वो शांत स्वरूप है, वो प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, जैसा आपने कल भी समझा और भी सेशंस में ये बात आती रही। तो हम आत्मा को सागर नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके गुण घटते बढ़ते रहते हैं और बदल भी जाते हैं। जो आज प्रेम स्वरूप है वो कल नफरत स्वरूप भी हो जाता है, हो जाता है, नहीं हो जाता। जो आज सुख स्वरूप है वो कल दुख स्वरूप भी हो जाता है। तो आत्मा में वो ये कहा, परमात्मा त्रिगुणातीत है, उसमें ये परिवर्तन नहीं होते, लेकिन आत्मा में ये परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए आत्मा को हम स्वरूप कहते हैं, सागर नहीं कहते। लेकिन परमात्मा सदा ही शांति का सागर है, सदा ही प्रेम का सागर है, उसके गुणों में कभी परिवर्तन नहीं आता है। तो परमात्मा के गुणों की महिमा को ही स्मरण करके हम उन्हें याद करते हैं। अब हमने कहा भगवान सब जगह कहाँ रहते हैं, परमात्मा कहाँ रहते हैं, हम उन्हें कहाँ याद करें, ईश्वर को कहाँ याद करें। जैसे मानो किसी से हमें मिलना है तो उसका एड्रेस हमें पता होना चाहिए ना, तभी हम उसको जाकर मिल सकते हैं। अगर पता ही नहीं वो कहाँ रहता है तो भटक जाएंगे, ढूंढते रहेंगे। तो इसीलिए भगवान को भी हम ढूंढते रहे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वो कहाँ रहता है। तो भगवान कहाँ रहता है, हमारे हृदय में रहता है, कण कण में रहता है, या परम धाम में रहता है, क्या कहेंगे? हमारे यहाँ क्या मानते हैं हिंदू धर्म में, भगवान सब जगह है, सब में है, सबके हृदय में भगवान निवास करते। मानते नहीं मानते? मानते हैं, है ना। तो एक बार चलो हमने मान लिया, थोड़ा सा हम इसकी गहराई में जाते हैं कि भगवान सब जगह है, कण कण में है। अच्छा, भगवान सब में है तो सब कैसे होने चाहिए? भगवान शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है और वो सब में है तो उसके गुण प्रकट होने चाहिए ना। क्योंकि जहां गुणी होता है उसका गुण ना हो ही नहीं सकता। सूर्य निकला है और प्रकाश ना हो, आग जल रही है और आपको गर्मी महसूस ना हो, आप फूलों के बगीचे से जा रहे हैं और आपको खुशबू ना आए, ऐसा होगा? या भोजन बन रहा है खुशबू ना आए, हो सकता है? तो गुण तो अवश्य होगा। तो भगवान जो इतने गुणों का भंडार है वो सब में सब जगह है तो सब कैसे होने चाहिए? क्या ऐसे हैं? हैं ऐसा? हम देखते हैं ऐसा नहीं है। क्या देखते हैं हम? तो विकार व्यापक हैं। हर एक इंसान के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है। तो दुनिया में आज पापाचार है, भ्रष्टाचार है, दुराचार है, अत्याचार है, जो भी हम कहें, है ना, जैसे हमने कल भी सुना। आज हम देखते हैं एक इंसान दूसरे इंसान को जान से मार देता है। कोई दिन ऐसा नहीं होता जब ये समाचार न हो कि किसी की हत्या हुई। होता है कोई दिन ऐसा? तो जिसने मारा उसमें भी भगवान और जो मर गया उसमें भी भगवान। तो क्या भगवान ने भगवान को मार दिया, ऐसा कहेंगे? एक जानवर दूसरे जानवर को खा जाता है तो जिसने खाया उसमें भी भगवान और जिसको खा लिया उसमें उसको भी भगवान। तो क्या भगवान ने भगवान को खा लिया? आज हम बीमार हैं, दुखी हैं, भगवान को पुकार रहे हैं तो क्यों दुखी हुए? भगवान है हमारे अंदर तो वो हमें दुखी क्यों होने देता है? फिर किस भगवान को पुकार रहे हैं हम? या दर्शन की अभिलाषा करते हैं तो जब मेरे में ही भगवान है तो किसके दर्शन की अभिलाषा हम कर रहे हैं? तो इसका मतलब हम ये तो समझ रहे हैं कि भगवान यहाँ नहीं है। तो फिर ये बात कहाँ से आई? अच्छा, और भी बातें हैं, जैसे मानो आज किसी कचड़े के पास से, कीचड़ के पास से, गंदगी के पास से आप गुजर रहे हैं तो हम उसे पसंद नहीं करते हैं, मुंह फेर लेते हैं, नाक बंद कर लेते हैं और उसमें भी हम कह रहे हैं भगवान है क्योंकि सब जगह है तो वहां भी भगवान है। फिर हमको कोई गधा कह दे तो गाली लगती है, है ना, कुत्ता कह दे तो गाली लगती है और उसमें भी भगवान है तो इसका मतलब हम भगवान को गाली दे रहे हैं, यही हुआ ना? तो ये सब बातें सिद्ध करती हैं कि परमात्मा सब जगह नहीं है। लेकिन फिर ये बात आई कहां से? तो ये बात आई भक्तों से। जो भगवान के परम भक्त हुए, सच्चे भक्त हुए, उन्होंने भगवान को श्वासों श्वास याद किया। हमारे जैसे स्वार्थी भक्त नहीं, जैसे हमने कहा आज हम भगवान को कब याद करते हैं? जब हमारे को जरूरत होती है। लेकिन ऐसे भी भक्त हुए भगवान के जिन्होंने अपना एक श्वास भी भगवान की याद के बिना नहीं जाने दिया। अब कोई किसी को इतना याद करेगा तो क्या महसूस करेगा? क्या महसूस करेगा? वो हमेशा ही मेरे साथ है। तो उन्होंने कहा जिधर देखूं उधर तू ही तू है। हम घर में याद करते हैं तो भी अनुभव होता है, हम मंदिर में हैं तो भी होता है, हम जंगल में हैं तो भी होता है, कोई आश्रम में है तो भी भगवान का अनुभव होता है। तो ये अनुभूति को उन्होंने कहा कि परमात्मा तो हमारे हृदय में वास करता है क्योंकि उसकी मानसिक उपस्थिति को वो अनुभव करते थे। आज दुनिया में भी कोई किसी को बहुत प्यार करता है, मानो होता ही है ना, तो वो महसूस करते हैं कि हम खा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम जा रहे हैं तो भी उसकी याद हमारे साथ है। कोई वैसे किसी के साथ हमेशा नहीं हो सकता लेकिन उसकी याद तो उसको हमेशा आती है, रहती है। तो फिर वो अपने भाव कैसे प्रकट करते हैं? ये तो मेरे दिल में बसा हुआ है। और सिंबल भी क्या दिखाते हैं? हार्ट का सिंबल बनाते हैं। किसी से बहुत प्यार होता है जिसको भूल नहीं सकते तो कौन से सिंबल दिखाते हैं? वही सिंबल दिखाते हैं ना। तो ये भाव व्यक्त करना, कोई कोई व्यक्ति दिल में थोड़ी बैठा है या दिल में बसा हुआ है, क्या भाव बता रहे हैं कि उसकी याद इतनी है हमको कि हमने उसको, जैसे माँ कहती है बेटा मेरी आंख का तारा है, तो आंख का तारा मतलब इतना प्यारा है, एक भाव व्यक्त किया ना, कोई आंख में थोड़ी तारा है वो, तो ये शब्द और भाव उसमें अंतर है। तो उन्होंने भी अपने भाव व्यक्त किए कि भगवान तो हमारे हृदय में वास करते हैं, और उनके भाव को समझने की बजाय उन शब्दों को ले लिया गया कि भगवान तो सबके हृदय में वास करते हैं। तो ये सुंदर भावना है जरूर, लेकिन सिद्धांतिक रूप से ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? परमात्मा तो अपने परम धाम में रहते हैं, और परम धाम से ही वो हमें अनुभव करा सकते हैं। कैसे अनुभव कराते हैं? जैसे आसमान में सूर्य चमकता है तो उसका प्रकाश पूरे विश्व को मिलता है, मिलता है नहीं मिलता? अगर मुझे मेरे घर में सूर्य का प्रकाश चाहिए तो आवश्यकता है कि मैं खिड़की खोलूं, दरवाजा खोलूं, तो वो प्रकाश मेरे घर में भी आ जाएगा। ऐसे ही परमात्मा परम धाम से, उनके लिए पृथ्वी कितनी बड़ी है, एक बॉल की तरह है, चंद्रमा से पृथ्वी कितनी बड़ी दिखती है, देखे हैं ना फोटो, एक बॉल की तरह, एक फुटबॉल की तरह ही तो दिखती है। और भगवान तो उससे भी ऊंचा परम धाम में रहते हैं, उनके लिए पृथ्वी क्या बड़ी बात है। तो हम कहीं भी उसको याद करते हैं, उनके गुणों का, उनकी शक्तियों का अनुभव हम कर सकते हैं। तो परमात्मा के लिए कई बार लोग कहते हैं वो अंतर्यामी है ना, हमारे अंदर की बात को जानते हैं इसलिए वो हमारे में है। तो वो हमारे अंदर में उसे होने की जरूरत नहीं है, वो हमारा रचयिता है, और रचयिता अपनी रचना को जानता है। एक इंजीनियर आज एक मशीन बनाता है तो उसको पता है कौन से पुर्जे कहाँ लगे हुए हैं, और अगर उसमें कोई खराबी आती है तो फटाफट वो उस पुर्जे को ठीक करता है या बदल देता है, वो मशीन ठीक हो जाती है, क्योंकि वो उसने उसको रचा है। लेकिन उसको वो मशीन में होने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही परमात्मा को हमारे में होने की जरूरत नहीं है हमें जानने के लिए, वो हमको जानते हैं। वो संसार के क्रिएटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, लेकिन इस संसार के एक्टर नहीं हैं। जैसे हम दुनिया में भी देखते हैं कोई फिल्म बनती है तो उसका प्रोड्यूसर अलग होता है और जो एक्टर्स होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर मालिक होता है। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर फिल्म के मालिक हैं, अगर वो फिल्म में कोई चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एक्टिंग करने वाले एक्टर अलग होते हैं। तो इस दुनिया में हम आत्माएं एक्टर हैं और परमात्मा इस संसार का हिस्सा नहीं है, वो न्यारा है, वो अपने परम धाम में रहते हैं। लेकिन जब ये संसार आउट ऑफ ऑर्डर होता है या इसमें उन्हें कोई परिवर्तन करना है तब वो इसमें हस्तक्षेप करते हैं, अन्यथा आत्मा स्वयं अपने कर्मों को करने के लिए स्वतंत्र है। और इसीलिए अच्छे बुरे कर्म आत्मा अपने संस्कारों के अनुसार करती। कई बार ये भी कई कई कहते हैं हम जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छा बुरा भगवान की मर्जी है, या भगवान की मर्जी होगी तो ये होगा। हाँ, जैसे कई बार कहते हैं ना कि भाई आप आइए यहाँ पर सेवा केंद्र पर आइए या आबू में आइए, तो फिर ये भी कहते हैं जब भगवान की मर्जी होगी तब। तो भगवान की मर्जी होगी या हमारी मर्जी होगी? किसकी मर्जी होगी? हमारी मर्जी, क्योंकि हमें भगवान ने विवेक प्रदान किया है। सही क्या है, गलत क्या है, ये आत्मा में भी विवेक है, और हम अपने विवेक के अनुसार अपने कर्मों का निर्णय खुद लेते हैं, और इसीलिए कर्मों का फल भी फिर हम खुद ही भोगते हैं। वो कर्म का फल कोई भगवान हमें दे रहा है नहीं। तो इसीलिए आत्मा अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेवार है। अगर कोई किसी का खून कर रहा है तो वो खुद जिम्मेवार है आत्मा, कोई भगवान उससे खून नहीं करवा रहा। हाँ, यूं तो घर में अगर माँ बाप के सामने दो बच्चे लड़ते हैं तो क्या कहेंगे वो, क्यों लड़ते हो, हम बैठे हैं ना, आपको क्या चाहिए। वो अपने सामने ये सब होता हुआ नहीं देखेंगे। तो भगवान फिर इस दुनिया में है तो क्या वो ये सब देखता रहेगा इस दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है? तो जरूर परमात्मा अपने धाम में है, और इसीलिए हम उसको कहते हैं ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम और ऊंचा तेरा काम। या हम ये भी कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ऊपर वाला भी कहते हैं, कोई बात हमें समझ नहीं आती या नहीं जानते तो हम कहते हैं ऊपर वाला जाने, अंदर वाला जाने, ऐसा बोलते हैं क्या? या नीचे वाला जाने ऐसा तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? ऊपर वाला जाने। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम इस बात को जानते हैं कि परमात्मा ऊपर अपने धाम में निवास करते हैं, जिसे कोई कोई लोग सातवां आसमान भी कहते हैं। और ये कल आपने समझा कि हम उसे शांति धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, परम धाम, ब्रह्मलोक आदि नामों से भी जानते हैं, जहां सब आत्माएं भी निवास करती हैं और परमात्मा भी निवास करते हैं। फिर हम कहते हैं आत्मा सो परमात्मा है। जैसे हमने अलग अलग मान्यताएं देखी, तो दूसरी तरफ हम कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कहते हैं ना, या त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इस रूप में भी हम उसको माता पिता बंधु सखा सब कहते हैं। और फिर हम कह रहे हैं आत्मा ही परमात्मा है, तो सब कौन हो गए? परमात्माएं हो गए। फिर तो कौन हमारा माता पिता हुआ? सभी पिता हो गए। तो क्या सही है, आत्मा परमात्मा की संतान है या सब परमात्मा, सब आत्मा सो परमात्मा है? क्या कहेंगे? आत्मा परमात्मा की संतान है, लेकिन आत्मा परमात्मा के समान हो सकती है। भले ही संतान है लेकिन ईश्वर के समान हो सकती है, जैसे एक बेटा अपने पिता के समान हो सकता है। कई बार लोग कहते हैं ये बेटा तो बाप जैसा है, इसकी शक्ल बिल्कुल बाप से मिलती है या इसके गुण बिल्कुल अपने पिता जैसे हैं, लेकिन फिर भी वो पिता तो नहीं है ना, अपना पिता हो सकता है? यहां तक कि बच्चे अपने पिता से आगे भी जा सकते हैं। आज माता पिता पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छा, ऊंचे से ऊंचा कैरियर बनाएं, तो बच्चे बहुत आगे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने पिता तो नहीं होंगे ना, होंगे क्या? ऐसे ही आज कितने धर्म पिता हैं, कितने महान आत्माएं हैं, कितनी देवात्माएं हैं, जिन्होंने आध्यात्मिक पुरुषार्थ करके अपने जीवन को भगवान के समकक्ष बनाया। हम उन्हें भगवान का ही दर्जा देते हैं, हम उन्हें भगवान बुद्ध कहते हैं, भगवान महावीर कहते हैं, क्राइस्ट को भगवान मानते हैं, या भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, हम क्या उनको दर्जा दे रहे हैं? भगवान का ही दर्जा दे रहे हैं, क्योंकि उनके गुण ईश्वर के समान हैं, लेकिन फिर भी वो परमात्मा नहीं है। वो अनेक देवात्माएं हैं, अनेक धर्म आत्माएं हैं, अनेक महात्माएं हैं, लेकिन परमात्मा एक है, परमपिता एक है। वो अपने पिता नहीं हो सकते, उन्होंने ये भी जो प्राप्ति की वो उस परम पिता से ही की है, परमात्मा से ही उन्हें वो प्राप्ति हुई है। आज हम जो भी याद करते हैं, जिन भी गुरुओं को, देवताओं को, इष्ट को, जिनको भी हम याद करते हैं, उन्होंने किससे पाया? परमात्मा से। और हम उनको याद करते हैं तो हम इनडायरेक्ट भगवान को याद कर रहे हैं, उनके माध्यम से कर रहे हैं, तो हमें उतनी प्राप्ति नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। मानो आपका बच्चा है और आपके भाई का बच्चा है, जो आपके बच्चे का आप पर अधिकार है, क्या आपके भाई के बच्चे का भी होगा? इनडायरेक्ट संबंध हो गया ना, एक है डायरेक्ट संबंध और एक है इनडायरेक्ट संबंध। होगा या नहीं होगा? वो आपसे मिलने आएगा, आप उसको थोड़ा बहुत जो आपको दिल में आएगा, मुझे इसको कुछ देना चाहिए, वो आप दे देंगे, लेकिन आपका बेटा तो आपकी हर वस्तु का मालिक है, अधिकार समझता है उस पर कि जो मेरे माँ बाप का है वो सब किसका है? मेरा है। तो परमात्मा से जब हमारा डायरेक्ट संबंध होता है तब हम सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं, और जो हम इनडायरेक्ट भक्ति करते आए आज तक, जितना हमें प्राप्त होना चाहिए वो नहीं हो पाया, क्योंकि हमारा संबंध ईश्वर से हुआ ही नहीं। तो ये अंतर आ जाता है। तो राजयोग में हम डायरेक्ट परमात्मा को याद करते हैं, वाया वाया नहीं जाते, हम डायरेक्ट शिव बाबा से हम योग लगाते हैं, परमात्मा शिव से हम योग लगाते हैं। और परमात्मा का कर्तव्य क्या है, हम इतना याद करते हैं भगवान को, कितने शिव के मंदिर हैं, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां शिव का मंदिर नहीं होगा। तो अगर हम किसी को याद करते हैं तो जरूर उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। कोई हमारे लिए बिना कुछ किए हम उसको याद नहीं करते। आज अगर महात्मा गांधी को हम याद करते हैं, या नेहरू जी को याद करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हैं, विवेकानंद, जो भी महापुरुष हुए, वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए कुछ ऐसा करके गए हैं, तब हम उनके मेमोरियल बनाते हैं, इतने बड़े बड़े मेमोरियल यादगार बनाते हैं। तो परमात्मा के भी मंदिर बनाकर हम इतनी पूजा करते हैं तो जरूर हमारे लिए उन्होंने कुछ किया है, तभी हम करते हैं। तो क्या किया है, जो गीता में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य त्रदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब संसार में धर्म की ग्लानि होती है, विशेष भारत में, तब मैं अधर्म का विनाश और सद्धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ, और फिर से इस कलियुगी सृष्टि का परिवर्तन करके परमात्मा नई सतयुगी सृष्टि का स्थापन करते हैं। तो ये हम शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, उसको यादगार रूप में, जब ज्ञान सूर्य इस धरा पर अवतरित हुआ और उन्होंने अज्ञान अंधकार को समाप्त किया, उन्हें हम सत्यम शिवम सुंदरम भी कहते हैं। तो ये परमात्मा के यादगार अवतरण का दिवस है। तो जैसे बताया कि परमात्मा तीन कर्तव्य करते हैं, तीन देवताओं के द्वारा, वो स्वयं नहीं करते लेकिन इन तीन देवताओं के द्वारा करवाते हैं, इसलिए उन्हें करण करावन हार कहते हैं। ब्रह्मा के द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना जो वर्तमान समय परमात्मा करें, और विस्तार से आप आने वाले सेशन में इसको सुनेंगे, तो अभी सिर्फ इतना ही समझते हैं हम कि परमात्मा शिव स्वयं वर्तमान समय इस धरती पर अवतरित होकर के ये कार्य कर रहे हैं। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना स्वयं परमात्मा शिव के द्वारा ही हुई है, और विष्णु के द्वारा आने वाली सतयुगी सृष्टि की पालना होती है। और ये जो कलयुगी दुनिया है वर्तमान समय, हम इसको कलयुग कहेंगे या सतयुग कहेंगे, कौन सा युग कहेंगे, कलयुग, जिन्होंने परमात्मा को पहचाना है और उनकी श्रीमत पर चलते हैं, उनके लिए संगम युग है। जरूर किसी ने संगम कहा, क्योंकि वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाओं को फॉलो करते हैं। लेकिन वैसे दुनिया में क्या है, अभी कौन सा युग है, कलयुग का समय है। तो इस कलयुग का परिवर्तन महाविनाश के द्वारा होगा, तो वो महाविनाश का कार्य शंकर जी के द्वारा होता है। हम देखते हैं दुनिया में महाविनाश की तैयारी है, इतने एटॉमिक वेपन्स बने हुए हैं दुनिया में, कहीं ना कहीं युद्ध चलते रहते हैं, इतना प्राकृतिक असंतुलन हो रहा है, पर्यावरण का हम देखते हैं आज क्या स्थिति हो रही है। तो कोई भी कारण बनेगा जो एक महाविनाश की स्थिति होगी, और उसके बाद फिर नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना होगी। तो ये परमात्मा के दिव्य कर्तव्य हैं, वो कोई छोटे छोटे काम नहीं करते। जैसे कोई कहते हैं बच्चे ने जन्म लिया तो भगवान ने दिया, और वो बच्चे की मृत्यु हो गई तो किसने ले लिया? भगवान ने ले लिया, ऐसे ही कहते हैं ना। तो बच्चे को जन्म दिया और ले लिया, ये दोनों काम भगवान नहीं करता। वो तो सुख दाता है, वो दुख क्यों देगा? बच्चे का जन्म हुआ हमारे कर्मों के कारण, हमारा उस आत्मा के साथ कोई लेन देन था, इसलिए वो बच्चा हमारे घर में आया। वो बच्चा चला गया, माना उसका अकाउंट पूरा हो गया और वो चला गया, तो भगवान ना बेचता है और ना ही वो बच्चे को ले लेता है। लेकिन परमात्मा का कर्तव्य इससे बहुत ऊंच और श्रेष्ठ है। वो फिर जब राजयोग के और भी सत्र जब आप सुनते हैं तब फिर और विस्तार से हम इसको समझते हैं। तो अभी हमने परमात्मा का परिचय प्राप्त किया, उनका नाम क्या है अभी आप बताएंगे, उनका नाम क्या है? शिव बाबा। शिव बाबा हम उन्हें प्यार से कहते हैं क्योंकि वो हमारे पिता हैं। प्राचीन समय में पिता को बाबा कहते थे, आज के समय में काफी बदल गया है ना। पहले पापा कहते थे, फिर डैडी हो गए, अब डैड हो गए, डैड हो गए मतलब। तो अब हम कैसे टाइटल देते हैं उनको? तो परमात्मा हमारे पिता हैं, इसीलिए हम उन्हें प्यार से शिव बाबा कहते हैं। और उनका स्वरूप क्या है? क्या स्वरूप है? ज्योति बिंदु स्वरूप, दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। और गुणों में वो सिंधु के समान है, भले रूप में बिंदु है लेकिन गुणों में सिंधु के समान है। जो आपको बताया, सर्व गुणों में परमात्मा सागर है। और कहाँ के निवासी हैं? कहाँ रहते हैं? परम धाम में, जो हम सब आत्माओं का भी अपना घर है। परमात्मा भी परम धाम निवासी हैं। और कर्तव्य क्या है? इस कलियुगी सृष्टि में पुनः सतयुगी सृष्टि की स्थापना करना। तो अभी जो हमने परमात्मा का परिचय प्राप्त किया इसके अनुसार अभी हम राजयोग का अभ्यास करेंगे। तो आप सभी सीधे होकर बैठ जाएं। और जो चिंतन मैं आपको दूंगी उस चिंतन को अनुभव करने की कोशिश करेंगे। भले ही मन थोड़ा इधर उधर जाएगा लेकिन कोशिश करें कि मन इन्हीं विचारों में रहे, अपने मन को समेट लें, आसपास की आवाजों से, व्यक्तियों से, और कुछ मिनट के लिए एकाग्र करें मस्तक के मध्य में, स्वयं को देखें। मैं एक चेतनीय शक्ति आत्मा हूं, मैं आत्मा अचर अमर अविनाशी हूं, मैंने संसार में कर्म करने के लिए इस शरीर का आधार लिया है, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूं, अपने निजी स्वभाव में मैं शांत स्वरूप हूं, शांति मेरा स्वधर्म है, शांति मुझे पसंद है, शांति में ही सुख समाया है, बढ़ती ही शक्ति है। मैं शक्ति स्वरूप हूँ। मैं आत्मा परम धाम से सृष्टि पर आई हूँ। मेरे परम पिता परमात्मा भी परम धाम निवासी हैं। ले जाए मन को परम धाम में, इस भौतिक जगत से पार, उस दिव्य प्रकाश के लोक में। जहां संपूर्ण शांति है, इस संसार की आवाजों से परे, मैं आत्मा स्वयं को ईश्वर के समीप अनुभव कर रही हूं, जो मेरे ही समान ज्योति बिंदु स्वरूप है। लेकिन गुणों में सिंधु है। शिव बाबा, आप शांति के सागर हैं। आपकी याद से मेरा मन शांत होता जा रहा है। आप प्यार के सागर हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ, आपने मुझे अपना बनाकर मुझे अपने प्यार का अनुभव कराया है। मेरे जन्म जन्मांतर की अभिलाषा पूर्ण हुई है। आप ही सर्वशक्तिवान हैं। जब ईश्वरीय शक्तियां मेरे साथ हैं, तो मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। आप ही मेरे सच्चे माता पिता, सत शिक्षक, सत गुरु हैं। मुझे सद ज्ञान देने वाले हैं, जो ज्ञान मुझे मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव कराता है। ये मुझे अनेक दुखों के बंधन से मुक्त कर रहा है। आप ही मेरे सतगति दाता हैं। मैं सदा ही आपकी श्रीमत पर चलकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाऊंगी। आप ही मेरे मन के सच्चे मित हो, साथी हो। मैं आत्मा एक ईश्वरीय सुख का, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। मेरे जीवन के ये पल अनमोल हैं। जब मैं भगवान के साथ हूँ, शिव बाबा के साथ का अनुभव करते हुए, उनसे शांति और शक्ति लेते हुए, मैं पुनः स्वयं को इस भौतिक जगत में अपने शरीर में अनुभव कर रही हूँ। लेकिन अब मेरा मन पहले से अधिक शांत और शक्तिशाली है। अपने दिन भर के कार्य व्यवहार में मैं इसे स्मृति में रखूंगी। ॐ शान्तिः।